मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने विषय चुना है संबोधन का कमाल। कैसे हम दूसरे को पुकारते हैं या बातचीत की शुरुआत करते हैं, आइए हम इस पर थोड़ी सी बात आज करते हैं। बहुत ही व्यावहारिक विषय है और सच पूछिए तो अभी इससे पहले कई एपिसोड तक जो हम लोगों ने ह्यूमन डिग्निटी की बात की है, किस तरह से मनुष्य की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए, और चूंकि हर मनुष्य कहीं न कहीं काम से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए उसके द्वारा किए गए काम की भी गरिमा की रक्षा की। मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम सब एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात करते हैं और सच पूछे तो बहुत ही मजेदार विषय पर। और इस विषय का शीर्षक अगर कुछ हम देना चाहें, थोड़ा सा आकर्षक शीर्षक, थोड़ा सा प्रभावशाली शीर्षक, तो आप इसे कह सकते हैं संबोधन का कमाल। यानी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बट नेचुरल है कि सबसे पहली जो स्थिति होती है वो संबोधन की होती है। हम उसे पुकारते हैं, बुलाते हैं, विश करते हैं, जो भी इस तरह से शुरुआत होती है। और किस प्रकार एक संबोधन आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करता है और आगे की जो बातचीत होने जा रही है उसके साथ उसका आप यूं कह दीजिए कि एजेंडा निर्धारित कर देता है, उसके परिणाम को कहीं ना कहीं फिक्स कर देता है पहले से कि क्या होने जा रहा है। संबोधन में मित्रों इतनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। आज हम इसी पर बात करेंगे और सच पूछे तो ये जो विषय है पिछले कुछ एपिसोड से जो हम मनुष्य की गरिमा, कार्य का सम्मान, इसकी जो बात करते आ रहे हैं उसी से ही कहीं ना कहीं यह जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम किसी को भी संबोधित करते हैं तो बट नेचुरल है कि वो व्यक्ति ही होता है और संबोधन से ही पता लग जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति क्या नजरिया रख रहे हैं, क्या हमारा दृष्टिकोण है, हम क्या मान रहे हैं उसे और कितनी तरजीह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही समझ रहे हैं, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वह व्यक्ति भी पहले शुरू के एक अक्षर से इस बात का अनुमान लगा लेता है कि सामने के नजर में मेरी क्या अहमियत है। और ये समझ लीजिए कि जैसे ही वह इस बात का अनुमान लगाता है उसके दिमाग में की एक पृष्ठभूमि बन जाती है कि अब वह आपको किस तरीके से लेगा, मतलब सामने जो बोलने वाला व्यक्ति खड़ा है उसे अब वह किस प्रकार ग्रहण करेगा। तो मित्रों संबोधन में इतनी बड़ी ताकत होती है। आइए मैं शुरुआत इसके एक उदाहरण से करता हूं। फ्रेंड्स, उदाहरण यह है कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा कि विवेकानंद जी जब विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में शिकागो गए और जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने पहला जो शब्द इस्तेमाल किया था, जिस तरीके से उन्होंने वहां के उपस्थित लोगों को संबोधित किया था, वे शब्द थे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अंग्रेजी में था ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब आप देखिए कि जो अंग्रेज हैं या इंग्लिश मैन है, वेस्ट है कह लीजिए, वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अभी कहेंगे देवियों और सज्जनों, उसकी जगह पर उन्होंने किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जैसे ही उन्होंने केवल यही तो बोला माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, केवल इतना कहना था, इतना भर कहना था मित्रों की वह हाल तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। और सच पूछे तो केवल शुरू के इन 5-6 शब्दों ने सुनने वालों के दिमाग में विवेकानंद की छवि बना दी, और विवेकानंद की छवि नहीं बल्कि हिंदुस्तान की छवि बना दी कि हिंदुस्तान क्या है। अब आप इस बात को थोड़ा सा विश्लेषित कीजिए, वैसे तो सामान्य सी बात लगती है। विश्लेषण इस रूप में फ्रेंड्स कि वो सब वेस्ट के लोग हैं, है ना, तो वेस्ट में यही संबोधन है लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां पारिवारिक संबोधन नहीं होते जैसे कि भारत में होते हैं। अब भाइयों और बहनों तो एक पारिवारिक जो संबंध रिश्तेदारी है उस तरह का संबोधन है, वहां ये नहीं होते। आप तो सुनकर शायद आश्चर्य करेंगे या हो सकता है विश्वास भी न करें कि वहां जो टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं उन सबको स्टूडेंट उनके नाम से पुकारते हैं, हेलो मिस्टर थॉमस इस तरीके से बुलाते हैं, हमारी तरह नहीं कि बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेंगे, नाम तो लेंगे ही नहीं कह दीजिए, सर ही कहते हैं। तो अब आप सोच करके देखिए कि वो वेस्ट के लोग वहां उपस्थित थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग उपस्थित थे, बल्कि यूं कह लीजिए कि सारे विद्वान लोग उपस्थित थे, और उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड था वो लेडीज एंड जेंटलमैन का था। लेकिन जैसे ही विवेकानंद कहते हैं माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो तालियों से पूरे के पूरे हॉल को भर देते हैं, उसकी गूंज से हॉल भर जाता है और फिर इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है। मित्रों, क्या आपको नहीं लगता कि जो दिमाग अभी तक लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने का आदि रहा है, वह भी, स्पेशली मैं जोर देकर के कह रहा हूं, वह भी जब इस तरह के संबंधों की बात सुनता है अपने लिए कि ये तो मुझे भाई और बहन के संबोधन से कर रहा है, यानी कि आई एम वेरी क्लोज टू हर हार्ट हिज हार्ट, कि मैं उसके हृदय के इतना निकट हूं कि वह मुझे उसी तरह से मान रहा है जैसे कि कोई अपने भाई को मानता है और कोई अपने बहन को मानता है, तो यह उसे टच कर जाता है, वह उसे छू जाता है। और छूता क्या है, छूने की फिर प्रतिक्रिया तुरंत होती है, शरीर में शारीरिक क्रियाएं होती हैं और दोनों हाथ एक दूसरे को शाबाशी देते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल को भर देते हैं। मित्रों, क्या यह एक उदाहरण सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमारा जो पहला संबोधन है वो किस तरीके का होना चाहिए? मैं ये नहीं कहता है आपको कि हमारा पहला संबोधन कोई रिश्तेदारी वाला ही हो, हम सबको भाई और बहन ही कहें, लेकिन ये हमारे हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की और हमारी बहुत सी जो दूसरी राष्ट्रीय भाषा है उनकी एक विशेषता है कि उसमें जो सर्वनाम है, सर्वनाम आदर सूचक सर्वनाम मौजूद हैं, और यहां तक कि सर्वनाम के हिसाब से फिर क्रियाएं भी बदल जाती हैं। जैसे शायद ये कुछ व्याकरण की भाषा हो गई तो थोड़ा सा तो गंभीर हो गया होगा, जैसे तुम जा रहे हो, तुम ये आदर सूचक सर्वनाम नहीं है, जा रहे हो, जा रहे ये क्रिया है, ये भी आदर सूचक नहीं, तुम जा रहे हो, ठीक है। आदर सूचक क्या होगा, तुम को कर दीजिए आप जा रहे हैं। अब आप देखिए कि जा रहे हैं, वहां सहायक क्रिया में बदलाव हो गया, अब वो जा रहा, तुम आप जा रहा हो नहीं है, अब आप है, आप जा रहे हैं। तो हमने सर्वनाम यानी कि जिसको हम संबोधित कर रहे हैं हमने उसको भी बदला, और फिर क्रिया और सहायक क्रियाओं में भी बदलाव लाया। हो सकता है कि क्रिया में सीधे सीधे बदलाव ना आए, सहायक क्रिया में बदलाव आ जाए, राइट। तो अब आप देखिए कि ये हमारी भाषा की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी भाषा ने हमारे हाथ में इतनी बड़ी शक्ति दे रखी है, भाषा की शक्ति, ध्वनि की शक्ति, संबोधन की शक्ति। अब सवाल यह है मित्रों कि हम इसका इस्तेमाल क्या सच में कर पाते हैं, क्या यह सही में हमारे अपनी आदत में ही शामिल हो चुकी है कि हम जिसको भी पुकारेंगे एक आदर के साथ पुकारेंगे, अनजान व्यक्ति तो फिर चाहे उम्र में कम ही क्यों न हो हम उसे आदर के साथ बुलाएंगे, और यदि कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो देखियो पद में कितना भी छोटा क्यों ना हो, धन में कितना भी छोटा क्यों ना हो, मैं समझता हूं कि इस प्रकृति ने या भगवान ने उसे हमारे सम्मान का अधिकारी बना करके इस धरती पर भेजा है। अगर किसी को ईश्वर ने मुझसे एक घंटे पहले क्या एक मिनट पहले ही इस धरती पर भेज दिया है तो मतलब ये भगवान ने एक आदेश दिया है या प्रकृति का ये आदेश है कि वह आपका सीनियर है, आपका बड़ा है और वह आपके सम्मान का अधिकारी है, फिर चाहे वह बड़ा व्यक्ति आपके यहां चपरासी ही क्यों ना हो। मतलब मुझे मित्रों ये लगता है, और मैं सच पूछे तो केवल कह नहीं रहा हूं, इसका पालन करता हूं और हमारे घर के सारे सदस्य इसका पालन करते हैं, और जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी मैं इसके पालन करने की सलाह देता हूं। मित्रों, अभी अमिताभ बच्चन जी के 75 वर्ष के अवसर पर जो कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम आया, हालांकि आप कह रहे होंगे कि सर को क्या हो गया है, ये अमिताभ बच्चन की बात लगभग रोज करने लगे हैं। मित्रों, अभी अवसर ऐसा आ गया है और अगर हम किसी को मॉडल के रूप में ले सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अभी कम से कम हमारी बातचीत के वो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही जीवंत मॉडल हैं। कल आपने गौर किया होगा कि जब वो अपनी बीमारी के दौर की बात बता रहे थे कि किस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए 1982 में कुली की शूटिंग के बाद, और लगने लगा था कि शायद अब वो नहीं बच पाएंगे, तो अब वो अपने बेटे की बात बताते हैं। अगर आप उसे फिर से देखें उस प्रोग्राम को तो गौर कीजिए, ये गौर करने की बात होती है कि वो कहते हैं कि अभिषेक बच्चन बड़े निराश हो गए थे, अभिषेक बच्चन बड़े निराश हो गए थे, बड़े डिस्टर्ब हो गए थे। वो ये नहीं कह रहे कि अभिषेक बड़ा निराश हो गया था, वो कह रहे हैं अभिषेक बड़े निराश हो गए थे। उस समय वो छोटी उम्र के थे, उनके हर शब्द में आपको वो आदर सूचक संबोधन मिल रहा है, जबकि उम्र में वो बहुत छोटे हैं। उम्र में ही छोटे नहीं है, रिश्ते में भी वो बेटा है, इसके बावजूद उनकी भाषा क्या है। और सच पूछे तो इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको ये आदर सूचक सर्वनाम संबोधन बहुत ज्यादा मिलेगा। वहां लोग बहुत ही आदर सूचक तरीके से लोगों को बुलाते हैं, ये उनके अपने सिस्टम में शामिल हो गया है। बल्कि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जहां हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध हैं, आना जाना उठना बैठना होता है, और मैं दंग रह जाता हूं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ऊंचे पदों पर नहीं है, बहुत ही सामान्य मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेकिन वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के सदस्यों से भी वो जिस लहजे में बात करते हैं वो सम्मान सूचक होता है, एकदम सम्मान सूचक होता है। और मैं देख करके दंग रह जाता हूं, मतलब इतनी खुशी होती है कि हां ये तहजीब है। दोस्तों, मैं खासकर जो कहना चाह रहा हूं आपसे वो कि ये जो संबोधन होता है ये हमारा सबसे पहला परिचय होता है। देखिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बातचीत की शुरुआत संबोधन से ही होती है और होनी भी चाहिए। मैं सच पूछे तो बड़ा दंग रह जाता हूं पढ़ करके, जब मेरे पास मेल आते हैं शाम को तो उसमें कुछ नहीं है, आई वॉन्ट टू नो दिस, बस दैट्स ऑल, खत्म, ऊपर कुछ नहीं, सर मैडम कुछ भी नहीं। कोई ऐसा थोड़े से में ही होता है, ज्यादातर लोग संबोधन लिखते हैं, कुछ तो क्या संबोधन लिखते हैं, HIE यानी कि हाय, और इसके बाद अपनी बात कहते हैं। मित्रों, मेरा उससे एतराज नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर उसे बदल कर आप उससे कोई बेहतर चीज ला सकते हैं तो क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। और मैंने तो केवल भारतीयों की बात नहीं बताई है, मैंने तो उदाहरण के तौर पर वेस्ट पश्चिमी देशों की बात बताई है, और ये मेरा अनुभव रहा है फ्रेंड्स, कि हम लोगों फॉरेन कंट्रीज जाने का बहुत मौका मिला है, मुझे भी और मैडम को भी। और जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग तो अब भारतीय हैं तो अपने हिसाब से ही लोगों से बातचीत करते हैं, उनको वही सम्मान देते हैं जो हम अपने बड़ों को देते हैं और खासकर अतिथि को देते हैं, और वो लोग खुश हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं और याद रखते हैं। वो भी चाहते हैं, जो दूसरों को नहीं देते हैं सम्मान, वो भी चाहते हैं कि उन्हें सम्मान मिले। तो मित्रों, इसमें कुछ लगता तो है नहीं, कोई पैसा नहीं लगता, कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगती, और सच पूछे तो कोई अतिरिक्त समय भी नहीं लगता है, केवल एक तो समझ की ही तो बात है। और केवल समझ के आधार पर अगर आप किसी को जीत सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और जब आप किसी का दिल जीतते हैं तो याद रखिए, फिर आप उसकी हर चीज को जीत लेते हैं, फिर आप जो काम कहने के लिए गए हैं उसमें भी आपकी जीत हो जाती है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आप जो निवेदन कर रहे हैं उस निवेदन के पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपने उसका दिल जीत लिया है, उसके दिमाग में आपकी छवि बेहतर हो गई है। तो मित्रों, एक बार थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, अगर आपको बेकार लगे, अर्थहीन लगे, या उल्टे ही पता लगा कि पड़ गया पासा, तो छोड़ दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, इसमें आप कुछ कोने नहीं जा रहे हैं। और अगर लगे कि नहीं यार ये तो कमाल करता है, ये काम करता है, तो उसे कंटिन्यू कीजिए, और कंटिन्यू ही नहीं कीजिए बल्कि दूसरों को भी बताइए कि भैया ये करो। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।